आज है 15 सितंबर दिन शनिवार। सभी श्रोताओं को संदीप सोनी का नमस्कार। अमेरिका के पूर्वी तट पर समुद्री तूफान फ्लोरेंस की वजह से कम 4 लोगों की मौत, 6 लाख घर अंधेरे में डूबे।
The storm is wreaking havoc on our state, and we're deeply concerned for farms, for businesses, for schools, and even whole communities which could be wiped away.
जेल से बाहर आने के बाद भीम आर्मी के चंद्रशेखर आजाद उर्फ रावण ने कहा, बीजेपी को सबक सिखाएंगे दलित।
दलित समाज के साथ जितना उत्पीड़न भाजपा के लोगों ने किया है, उसका दलित समाज जवाब देने के लिए तैयार बैठा है। वो इंतजार कर रहा 2019 के चुनाव का।
इसरो के पूर्व अध्यक्ष ने माना, जासूसी मामले में वैज्ञानिक को फंसाने की वजह से क्रायोजेनिक इंजन बनाने में हुई देरी। सब विस्तार से, लेकिन पहले विश्व समाचार।
बीबीसी समाचार भूमिका राय से। समुद्री तूफान फ्लोरेंस की वजह से अमेरिका के पूर्वी तटीय इलाके में कम 4 लोग मारे गए हैं। कई इलाकों में पानी भर जाने से लोग अपने ही घरों में फंस गए हैं। भारी बारिश और तेज हवा की वजह से राहत और बचाव दल को भी काम करने में मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। अमेरिकी नेशनल हरिकेन सेंटर का कहना है कि फ्लोरेंस दक्षिणी कैरोलिना के पूर्वी ओर बढ़ रहा है। ये काफी तेज है, जिसकी वजह से खतरा बना हुआ है। उत्तरी और दक्षिणी कैरोलिना के कई इलाकों में बाढ़ की स्थिति पैदा हो गई है। फेडरल इमरजेंसी एजेंसी का कहना है कि हम लोगों को सुरक्षित जगहों पर पहुंचाने और उनकी मदद करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन बहुत से लोग ऐसे भी हैं जो अपना घर छोड़कर नहीं जाना चाहते। ऐसे में उनकी मदद कर पाना मुश्किल है। मांखट तूफान ने फिलीपींस में दस्तक दे दी है। फिलीपींस का उत्तरी तट इसकी चपेट में है, जहां हवा 205 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल रही है। ये तूफान जिस रास्ते से होकर गुजरेगा, उस इलाके में करीब 40 लाख लोग रहते हैं। 9,000 से ज्यादा लोग अस्थायी कैंपों में चले गए हैं। अधिकारियों ने तूफान की वजह से भारी तबाही होने की आशंका जताई है। कुछ इलाकों में ये कैटेगरी 4 का होगा। इससे पहले साल 2013 में भी फिलीपींस में कैटेगरी 4 का तूफान हयान आया था, जिसमें करीब 7,000 लोग मारे गए थे और लाखों लोग प्रभावित हुए थे। ये तूफान भी उतनी ही ताकत का है, इसलिए लोग काफी डरे हुए हैं। मायराना परालाग नाम की एक महिला का कहना है, अधिकारियों ने बताया है कि ये तूफान भी उतना ही खतरनाक और ताकतवर है जितना पहले वाला तूफान था, इसलिए हम बहुत डरे हुए हैं। हमें कुछ समझ नहीं आ रहा कि हमारे साथ क्या होने वाला है। ये थे परालाग के शब्द। राष्ट्रपति चुनाव के दौरान डोनाल्ड ट्रंप के कैंपेन मैनेजर रहे पॉल मैनफोर्ट अमेरिकी चुनाव में रूस के कथित दखल की जांच में सहयोग देने के लिए तैयार हो गए हैं। शुक्रवार को अदालत में पेश हुए पॉल मैनफोर्ट ने 2 आपराधिक मामलों में जुर्म कबूल कर लिया है, लेकिन व्हाइट हाउस का कहना है कि इससे राष्ट्रपति ट्रंप का कुछ भी लेना देना नहीं है। साल 2016 में अमेरिकी राष्ट्रपति पद के लिए हुए चुनाव में रूस के कथित हस्तक्षेप की जस्टिस डिपार्टमेंट जांच कर रहा है। पॉल मैनफोर्ट के एक वकील केविन डाउनिंग ने इस संबंध में एक बयान जारी करते हुए कहा, वो सिर्फ इतना चाहते थे कि उनका परिवार एक सुरक्षित और बेहतर जीवन जी सके। उन्होंने अपनी जिम्मेदारी स्वीकार कर ली है। ये थे केविन के शब्द। आप सुन रहे हैं बीबीसी समाचार। ऑस्ट्रेलिया में लोगों को चेतावनी दी गई है कि अगर वे स्ट्रॉबेरी खा रहे हैं तो उसे सीधे मुंह में डालने से पहले काट कर देख लें। ऑस्ट्रेलिया में बीते कुछ दिनों में बहुत से लोगों को स्ट्रॉबेरी में सुई मिली। कई लोग तो इसकी वजह से जख्मी भी हो गए। इन मामलों के सामने आने के बाद स्ट्रॉबेरी के बहुत से ब्रांड्स को बाजार से वापस ले लिया गया है। क्वींसलैंड हेल्थ सेंटर के ट्विटर हैंडल से एक ट्वीट करके लोगों को चेतावनी दी गई है और कहा गया है कि अगली सूचना तक वो ये एहतियात बरतें। उत्तरी और दक्षिणी कोरिया के राजनेताओं ने दोनों देशों के बीच नियमित और सीधे संवाद के लिए खोले गए संपर्क कार्यालय का स्वागत किया है। 60 साल में पहली बार इस तरह की कोई पहल हुई है। उत्तरी कोरिया के कमिटी फॉर पीसफुल रियूनिफिकेशन के चेयरमैन री सॉन ग्वान ने कहा कि इस पहल से ये साफ हो जाता है कि दोनों देशों ने शांति के पक्ष में अपने मतभेद को दरकिनार कर दिया है। उन्होंने कहा, हमारे बीच के मतभेद अब खत्म हो चुके हैं। हम ये कह सकते हैं कि जो कदम आज उठाया गया है वो हमारे लोगों की मेहनत का परिणाम है। ये थे ग्वान के शब्द। बीबीसी समाचार।
ये बीबीसी हिंदी सेवा है और आप सुन रहे हैं सुबह की सभा नमस्कार भारत संदीप सोनी के साथ। अमेरिका के नॉर्थ कैरोलिना में समुद्री तूफान फ्लोरेंस की वजह से अभी तक 4 लोगों के मारे जाने की पुष्टि हो चुकी है। पूर्वी तटीय इलाके में लगभग 6,00,000 घरों में बिजली नहीं है। राहत और बचाव कार्य जारी है लेकिन तेज हवाओं के कारण राहत कर्मियों को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है।
The storm is wreaking havoc on our state and we're deeply concerned for farms, for businesses.
नॉर्थ कैरोलिना के मेयर रॉय कूपर कह रहे थे कि तूफान ने हमारे राज्य में काफी तबाही मचाई है। हमें अपने खेतों की, कारोबार की, स्कूलों की और पूरे समुदाय की चिंता है लेकिन मैं कैरोलिना के लोगों को जानता हूँ। हम एकजुट रहेंगे और साथ मिलकर निपटेंगे। आइए सीधे चलते हैं वॉशिंगटन जहाँ मौजूद हैं बीबीसी संवाददाता इरम अब्बासी। इरम, सबसे पहले तो ये बताइए कि ये जो तूफान अमेरिका के एक हिस्से में इस समय बना हुआ है, कब तक अमेरिका से गुजर जाने की संभावना जताई जा रही है? कब तक बना रह सकता है तूफान?
जी बिल्कुल, जैसा कि हमें सरकारी अहलकारों ने बताया है, उन्होंने तस्दीक की है कि अब ये जो है तूफान नॉर्थ कैरोलिना से जो है साउथ की तरफ बढ़ रहा है तेजी के साथ। गो के इसकी शिद्दत में किसी हद तक कमी तो आई है लेकिन तबाही जिस तरह आपने बताया सामीन को कि अब तक जो है कम से कम 4 लोग जो है वो हलाक हो चुके हैं जिसमें 1 माँ और उनका 1 छोटा बच्चा शामिल है, जिस पे दरख्त गिरा जिसकी वजह से उनकी मौत वाकई हुई। इसके अलावा एक और शख्स जो है उनके बारे में बताया जा रहा है कि वो जनरेटर ठीक कर रहे थे उस वक्त वो जो है उस पानी के भंवर में फंस गए आंधी के और वहां से निकल नहीं पड़े। तो इस पूरे वीकेंड पे यानी अभी इस वक्त जो है जुमे की रात हो रही है अमरीका में, प्रिडिक्शन ये की जा रही है कि इतवार तक जो है सिचुएशन डेंजरस खतरनाक रहने का इम्कान है। नॉर्थ कैरोलिना में ये ऑलरेडी हमने तबाही देखी है, बहुत सारे बिजनेसेस बंद हो चुके हैं, 6,00,000 लोग जो हैं उनके पास बिजली नहीं है और अब ये साउथ की तरफ बढ़ रहा है जहाँ पर कहा जा रहा है कि मजीद अमवात जो है, मजीद हलाकतें जो हैं उनका खदशा है कि वो हो सकती हैं। साथ ही साथ यहाँ के जो मेट्रोलॉजिस्ट हैं उनका ये भी कहना है कि शिद्दत में अगर हवा की कमी आ भी जाए तो जिस तरह से पानी बढ़ रहा है यूएस ईस्ट कोस्ट की जानिब, उससे यही लग रहा है कि मजीद तबाही होगी। लोगों को इवैक्यूएट किया जा रहा है, उनको कहा जा रहा है कि वो अपना घर छोड़ दें। कम से कम 1.7 मिलियन लोग हैं जिनसे ये कहा जा रहा है कि वो अपना घर छोड़ दें, जिससे कुछ लोग जो है वो बजिद हैं कि वो घर नहीं छोड़ेंगे। वहाँ पर रेस्क्यू टीम्स भेजी जा रही हैं ताकि उनकी मदद की जा सके, वहाँ से निकल सके, क्योंकि बहुत सारे लोग हम ये भी जानते हैं कि वो कम से कम 200 के करीब लोग जो है वो फंस गए थे इसी वजह से, क्योंकि वो निकलना नहीं चाह रहे थे और फिर टीम्स भेज कर उनको वहाँ से निकाला गया। तो इस पूरे वीकेंड पे जो है इम्कान यही है कि तबाही का सिलसिला इस तूफान की वजह से जारी रहेगा।
बहुत शुक्रिया, ये थी इरम अब्बासी बीबीसी संवाददाता वॉशिंगटन से। इधर भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी इसरो के पूर्व अध्यक्ष जी माधवन नायर ने बीबीसी से कहा है कि जासूसी के मामले में इसरो के एक वैज्ञानिक को गलत तरीके से ना फंसाया गया होता तो भारत को क्रायोजेनिक इंजन बनाने में देर ना लगी होती। कौन है वो वैज्ञानिक और क्या है मामला, बता रहे हैं बेंगलुरु से इमरान कुरैशी।
24 साल बीत गए लेकिन डॉक्टर नंबी नारायण को आज तक समझ नहीं आया कि उन पर जासूसी का इल्जाम क्यों लगा। सुप्रीम कोर्ट का निर्णय आने के बाद उन्होंने बीबीसी से कहा, ये मनगढ़ंत मामला हमारे खिलाफ किया गया लेकिन क्यों वो हमें नहीं पता। ये थे डॉक्टर नंबी नारायणन के शब्द। 24 साल पहले डॉक्टर नारायणन और उनके साथी शशि कुमार, 2 मालदीव की महिलाएं और बेंगलुरु के 2 व्यापारियों को केरला पुलिस ने गिरफ्तार किया था। उन पर यह इल्जाम था कि उन्होंने किसी दूसरे देश को इंजन का डिजाइन बेच दिया था जबकि उस इंजन की टेक्नोलॉजी भारत में बनी ही नहीं थी। पुलिस हिरासत में डॉक्टर नारायणन के साथ काफी अत्याचार हुए लेकिन डॉक्टर नारायणन उस पर बात नहीं करना चाहते हैं। 1998 में सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर डॉक्टर नारायण को बरी कर दिया गया। उन्हें फिर से वही प्रोजेक्ट में काम करने के लिए कहा गया जहां वो काम कर रहे थे मगर डॉक्टर नारायण ने मना कर दिया। मैं प्रोजेक्ट डायरेक्टर का काम करने के लायक नहीं था। उस स्थान के लिए आप खुद को एक कमांडिंग स्थिति में रहना चाहिए। मैं उस पोजीशन पर कैसे काम कर सकता था जबकि उसी काम के लिए बेइज्जत किया गया था। ये थे डॉक्टर नंबी नारायणन के शब्द। अब सवाल ये उठता है कि अगर डॉक्टर नारायणन को इस मामले में फंसाया नहीं जाता था तो क्या भारत क्रायोजेनिक इंजन पहले ही बना सकता था। हमने ये सवाल इसरो के पूर्व चेयरमैन डॉक्टर माधवन नायर से पूछा। देश के सबसे बड़े न्यायालय से देश के एक महान वैज्ञानिक को राहत दी है। वो ऐसे वैज्ञानिक हैं जिनका देश को शुक्रगुजार होना चाहिए, क्योंकि उन्होंने पीएसएलवी और जीएसएलवी सैटेलाइट प्रोग्राम के लिए हाईएस्ट थ्रस्ट इंजन बनाया। अगर वो इस काम में जुटे रहते तो क्रायोजेनिक इंजन का काम और जल्दी खत्म हो जाता। ये थे डॉक्टर माधव नायर के शब्द। डॉक्टर नारायण का मानना है कि सुप्रीम कोर्ट से राहत मिलना एक बड़ी बात है, लेकिन तकलीफ बनी रहेगी। इमरान कुरैशी, बीबीसी बेंगलुरु।
दिल्ली से सटे गुरुग्राम में एक मस्जिद को अवैध तरीके से बंद करने के मामले में प्रशासन ने काफी विवाद के बाद अब आदेश जारी किया है कि मस्जिद में लगाए गए ताले खोल दिए जाएं। क्या है पूरा मामला, बता रहे हैं बीबीसी संवाददाता सलमान रावी।
हरियाणा के गुरुग्राम की शीतला माता कॉलोनी, ये इलाका कभी समुदायों के बीच भाईचारे की मिसाल हुआ करता था, जहां मंदिर, मस्जिद और चर्च सब आसपास ही हैं। मगर पिछले कुछ दिनों से इस मोहल्ले को लेकर माहौल तनावपूर्ण होने लगा, जिसके बाद सुरक्षा बलों को तैनात किया गया। यहाँ की मस्जिद को नगर निगम ने सील कर दिया था। तर्क था कि निर्माण अवैध है। बाहर के लोग घटना को लेकर तनाव फैलाने की कोशिश करने लगे, जिससे यहाँ के रहने वाले नाराज हैं।
कुछ भी नहीं कहना
है। मोहल्ले के लोग एक दूसरे के त्योहार मनाते आ रहे हैं। यहाँ के बुजुर्ग हाजी अलीम तो जागरण कमेटियों के सदस्य भी हैं।
मंदिर में वो माइक बजाएं, खूब पूजा करें, हमें कोई आपत्ति नहीं, जागरण करते हैं, उसमें हम पूरा अपना सहयोग। पिछले साल मेरे घर के सामने 5-10 लोग बैठे थे, कहने लगे भाई वो जागरण करना है। मैंने कहा कैसे करें, मैंने उठा के 1100 रुपये दिए उनको। मैंने कहा ये लो शुरुआत करो, रजिस्टर में सबसे पहले ओपन में मेरा नाम चढ़ा हुआ है।
कुछ लोगों के प्रयास ने माहौल खराब होने की कोशिश करने वालों को कामयाब नहीं होने दिया। इन्हीं में से एक है नागरिक एकता मंच के राहुल रॉय।
मेरे ख्याल से ये बहुत जरूरी है कि एक गुड़गांव की सिविल सोसाइटी आगे आए, कोशिश की जाए कि एक तो शांति बनी रहे और जो ऐसे तत्व हैं उनको चेक किए,
तनाव ना फैले। इसको लेकर गुरुग्राम के मंडलीय आयुक्त ने अधिकारियों और नागरिकों की बैठक बुलाई। उन्होंने सील की गई मस्जिद का ताला खोलने का आदेश दिया है। बीबीसी से बात करते हुए गुरुग्राम के मंडलायुक्त डी सुरेश कहते हैं,
शायद बगैर नोटिस जो ना किसी पर्टिकुलर बिल्डिंग को सील किया गया है, तो वो डी सीलिंग करने के बारे में ये निर्णय लिया गया है।
नू के विधायक जाकिर हुसैन भी उसी बैठक में शामिल थे जो मंडल आयुक्त ने बुलाई थी। वो भी कहते हैं कि गुरुग्राम में कभी भी संप्रदायों के बीच तनाव नहीं रहा है।
हरियाणा की संस्कृति है, हमारे देश की संस्कृति है कि 36 बिरादरी के लोग एक दूसरे के धर्म का, मजहब का आदर सम्मान करते हैं। लेकिन कुछ चंद लोग ऐसे हैं जो इस माहौल को बिगाड़ के इस भाईचारे को खराब करना चाहते हैं। लेकिन यहाँ का भाईचारा इंशाल्लाह ना कभी बिगड़ा है, ना हम बिगड़ने देंगे।
प्रशासनिक अधिकारियों और प्रबुद्ध नागरिकों की पहल से अब गुरुग्राम में स्थिति सामान्य हो रही है। सेक्टर 5 में पुलिस बल का भारी बंदोबस्त है, मगर स्थानीय लोग अफवाहों और बाहरी लोगों की गड़बड़ी फैलाने के प्रयास से अपने इलाके को बचाना चाहते हैं। सलमान रावी, बीबीसी गुरुग्राम।
उत्तर प्रदेश के सहारनपुर में पिछले साल जातीय हिंसा के बाद राष्ट्रीय सुरक्षा कानून के तहत जेल में बंद रहे भीम आर्मी के चंद्रशेखर आजाद उर्फ रावण ने जेल से रिहा होने के बाद बीजेपी पर दलितों का उत्पीड़न करने का आरोप लगाया है और दावा किया है कि दलित इसका जवाब अगले चुनाव में देंगे। हमारे सहयोगी समीर आत्मज मिश्र ने सहारनपुर जाकर उनसे बात की।
मेरी रिहाई तो 2 नवंबर 2017 में जानी थी, जो 11 महीने उन्होंने मुझसे छीन लिए, मेरे परिवार से, मेरे मिशन से, मेरे साथियों से, मुझसे दूर रख के। तो मेरी लिबर्टी राइट जो छीन लिया, उसके लिए तो मैं दोषी है।
क्या लगता है कि किस वजह से उन्होंने पहले रिहा कर दिया?
सुप्रीम कोर्ट में तारीख थी, वो उसमें मुझे वहाँ से जो है न्याय मिल जाना था, मुझे न्यायपालिका पूरा भरोसा है। लेकिन क्योंकि 3 दिन पहले ही सरकार के वकील ने सरेंडर वहाँ कर दिया था, उसमें कोई एविडेंस उनके पास था ही नहीं, तो उन्होंने 3 दिन पहले ही सरकार को इंटीमेट कर दिया था कि बोस वहाँ टिकने वाले नहीं, सुप्रीम कोर्ट आपको फटकार लगा के चंद्रशेखर को रिहा कर देगी। उन्होंने सोचा चले इसका पॉलिटिकल मान लेते एक दिन पहले।
जमानत हुई थी और जमानत में आपको रिहा नहीं किया गया था, उसके बाद तुरंत ही आपके ऊपर एक दूसरा कानून लगा दिया गया। सरकार को आपसे ऐसा क्या खतरा था?
ये सिलसिला स्टार्ट हुआ 20 अप्रैल 2017 में, जब भाजपा के लोग एक दलित मुस्लिम क्षेत्र में बाबा साहब अंबेडकर की जयंती के नाम पे एक दंगा कराना चाहते थे, और मैं यहाँ मौजूद था, तो मैंने दलित मुस्लिमों को झगड़ने नहीं दिया। तब से मैं इनकी आंखों में खटक रहा था। इन्होंने सोचा किस तरह से इस व्यक्ति को, क्या तो अपनी तरफ मिला लेते हैं, झुका लेते हैं, तो वो दोनों चीज़ों में कामयाब नहीं हुई। 9 मई को जो आंदोलन हुआ उसमें मुझसे मदद ली, उससे मदद लेकर DM ने और SSP ने बहुत सारे लोगों को जो नाराज थे उन्हें समझाने का काम किया, उन्हें रोकने का काम किया। फिर अचानक से किस प्रेशर में वो उल्टे मुकदमे मेरे ऊपर ही कर दिए। एक तो मुझसे मदद लेते, फिर मेरे ऊपर मुकदमे कर देते, फिर मुझे जेल डाल देते।
आपका जो संगठन है भीम आर्मी है, कोई राजनीतिक दल है नहीं, और आप कह रहे हैं कि हम उनसे लड़ाई करेंगे, हम उनको चुनौती देंगे, आपका क्या क्या प्लानिंग है, किस तरीके से करेंगे?
नहीं, ये सामाजिक संगठन ही रहेगा, लेकिन क्योंकि हमारे पास वोट की ताकत है, दलित समाज के साथ जितना उत्पीड़न भाजपा के लोगों ने किया है, 2 अप्रैल हो या शब्बीरपुर मामला हो, जितने भी मामले हुए हैं, जितना उत्पीड़न दलित समाज के साथ हुआ है, उसका उसमें दलित समाज जवाब देने के लिए तैयार बैठा है। वो इंतजार कर रहा 2019 के चुनाव का।
विरोध किससे है आपका? सरकार से है, भारतीय जनता पार्टी से है, या सभी राजनीतिक दलों से है?
जिन लोगों ने सत्ता का दुरुपयोग करके हमारे लोगों को, निर्दोष लोगों को जेल डालने का काम किया, 2 अप्रैल में जहाँ जहाँ हिंसा हुई वहाँ BJP की सरकार थी, तो हमें सीधे रूप से समझ आ रहा है कि BJP की सरकार ही इस हिंसा की पूर्ण रूप से जिम्मेदार है। अभी आप देख लेना, एक माहौल बन रहा है, लोग ये चाहते हैं कि BJP को सत्ता से दूर किया जाए।
जो सरकार ने वजह ये बताई है कि आपकी माता जी ने एप्लीकेशन दिया कि इनको रिहा कर दिया जाए, तो उस एप्लीकेशन पर सरकार ने एक्शन लेते हुए, कार्रवाई करते हुए रिहा करने का फैसला किया।
मेरी डिटेंशन जो बढ़ी है वो जुलाई में बढ़ी, तो सरकार वो लेटर जिसकी वो बात कर रहे हैं वो तो जुलाई से पहले हमने मुख्यमंत्री को दिया गया था, तो उसकी याद जो है 2 महीने बाद कैसे आई? जैसे मुझे अब निकाल दे कहीं कोई घटना करा के 2 या 4-10 दिन बाद उसने मुझे इन्वॉल्व करके फिर से राशुका लगा दें, मैं समझ रहा हूँ, मुझे तो साजिश की भी बू आ रही है इसमें।
ये थे भीम आर्मी के चंद्रशेखर आजाद उर्फ रावण।
नौजवानों को रोजगार चाहिए।
आप जिन लोगों के बीच में बैठे हैं उन लोगों को एक किस्म की नौकरी चाहिए, क्योंकि वो सब लोग आज की तारीख
में पकौड़े तो नहीं तलेंगे ना मैम।
लड़कियां कैसे बचेंगी?
वो हरियाणा की लड़कियों की बात कर रहे थे, उन पर तो फिल्म भी बनी है दंगल, जहां पे वो 3 ऐसी मजबूत लड़कियां दिख जाए तो बंदे डर जाए, लेकिन वो मेडल तभी लेंगे जब बचेंगे।
राजनीति पर क्या सोचता है आज का नौजवान?
वी डिडंट कम फॉर BJP और कांग्रेस।
कहां है भारत का युवा? सुनिए बहस BBC हिंदी के विशेष कार्यक्रम ग्लोबल क्वेश्चंस में रूपा झा के साथ, शनिवार 15 सितंबर शाम 7:30 से 8 बजे दिन भर कार्यक्रम में।
और स्टूडियो में भूमिका राय तैयार हैं ये बताने के लिए दिल्ली से छपने वाले आज के अखबार क्या सुर्खियां बयां कर रहे हैं।
जी संदीप, अगर बात करें इंडियन एक्सप्रेस की, तो इंडियन एक्सप्रेस ने प्रधानमंत्री ने जो कल समीक्षा बैठक की है तेल की बढ़ती कीमतों और गिरते हुए रुपए डॉलर के मुकाबले गिरते हुए रुपए की कीमत पे, उस पर उस समीक्षा को इंडियन एक्सप्रेस ने पहले पन्ने पे छापा है, और इसमें निर्यात को बढ़ाने के साथ ब्याज दर बढ़ाने जैसे उपायों पर चर्चा हुई। इसके अलावा टेरी के पूर्व प्रमुख RK पचौरी की मुश्किलें अब बढ़ सकती हैं।
वही जिन पर यौन शोषण के जी, आरोप जी। थे।
दिल्ली की एक अदालत ने उनके खिलाफ कराए गए यौन शोषण के मामले में जो उनपे आरोप लगाए थे उसमें आरोप तय करने का आदेश दिया है कोर्ट ने। ये FIR की गई थी, उसमें अब आरोप तय होंगे। ये खबर भी इंडियन एक्सप्रेस ने पहले पन्ने पर ली है। उससे पहले उसके अलावा समय से पहले जेल से छूटकर आए भीम आर्मी के संस्थापक चंद्रशेखर उर्फ रावण ने कहा है कि वो BJP को मुंह तोड़ जवाब देंगे। हालांकि उन्होंने मायावती के संबंध में कहा है कि उनसे उनका कोई मतभेद नहीं है। ये खबर भी इंडियन एक्सप्रेस अखबार में ही पहले पन्ने पर है। अगर बात करें हिंदुस्तान टाइम्स की, तो हिंदुस्तान टाइम्स ने दहेज उत्पीड़न कानून पर सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला कल यानी शुक्रवार को आया उसे प्रमुखता दी है। अखबार ने लिखा है कि अब इस नए कानून के तहत परिवार कल्याण समिति जो है वो दहेज कानून में कोई अहम भूमिका नहीं रहेगी, उसका रोल जो है वो ख़त्म कर दिया गया है। और एक खबर और है जिसमें कहा गया है कि जम्मू कश्मीर का मामला है ये, जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ ज़िले में एक मिनी बस खाई में गिर गई जिसमें कम से कम 17 लोगों की मौत हो गई है और 16 लोग घायल हो गए हैं। ये बीते हफ्ते में ये दूसरी एक बड़ी घटना है। और द हिंदू ने इसरो के पूर्व वैज्ञानिक नाम्बी नारायण के जासूसी कांड में बरी होने की खबर को अपने पहले पन्ने पर जगह दी है। और अगर आप सोशल मीडिया पे जो लोग हमारे साथ ही एक्टिव हैं उन्होंने कुछ दिन कल एक वीडियो देखा होगा जिसमें एक लड़का है वो एक लड़की को बहुत बेरहमी से मार रहा है। इस मामले में क्या कहते हैं गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने ट्वीट भी किया था। फिलहाल वो उस लड़के को गिरफ्तार कर लिया गया है। तो अगर प्रमुख अखबारों की बात करें तो ये थी आज की प्रमुख सुर्खियाँ।
बहुत शुक्रिया भूमिका। श्रोताओं, पश्चिमी देशों के मीडिया में राजनेताओं के प्रेम प्रसंगों की चर्चा जमकर होती है, लेकिन भारतीय मीडिया में ऐसा नहीं होता, नहीं के बराबर होता। ऐसे मामलों पर ये ज़रूर होता है कि दबी जुबान से लोग बात करते हैं, लेकिन ये सच है कि नेहरू, गांधी, लोहिया से लेकर नारायण दत्त तिवारी तक कई नेताओं के प्रेम संबंध रहे हैं। रेहान फजल विवेचना में आज कुछ ऐसे ही प्रेम प्रसंगों की चर्चा कर रहे हैं।
जब प्यार किया तो डरना क्या, प्यार किया कोई चोरी नहीं की, प्यार किया।
जब मामला निजी जीवन की गोपनीयता का होता है तो भारतीय राजनीतिज्ञ दुनिया के सबसे बड़े तानाशाह में बदल जाते हैं, बल्कि उनमें एक तरह का अलिखित करार सा होता है कि चाहे वो लोग एक दूसरे का कितना भी राजनीतिक विरोध क्यों न करें, लेकिन एक दूसरे के प्रेम प्रसंगों, विवाहेतर संबंधों और तथाकथित दूसरी औरतों की चर्चा सार्वजनिक रूप से नहीं करेंगे। एकाध अपवादों को छोड़कर भारतीय राजनीतिज्ञों ने इस करार को निभाया भी है। शायद इसकी वजह यह है कि हर कोई शीशे के घर में रह रहा है, लेकिन वरिष्ठ पत्रकार अजय सिंह इसके पीछे एक दूसरा कारण मानते हैं।
विदेश में भी होते हैं शीशे के घर, लेकिन फिर भी पत्थर फेंके जाते हैं। यहाँ फ्यूडल पास्ट है जिसमें कि हम ये मान के चलते हैं कि राजा जो है उसको कुछ चीजें अधिकार में है। एक इटालियन वर्ड है ओमोल्टा, जिसका मतलब होता है कि जो अपराधी वो होते हैं वो उनमें एक सीक्रेट पैक्ट होता है जिसमें हम आपके बारे में नहीं बताएंगे, आप मेरे बारे में नहीं बताएंगे। तो भारतीय राजनीति में जो टॉप लेवल पे है वो ओमोल्टा जैसा है कि आप मेरे बारे में मत बताइए, हम भी आपके बारे में नहीं बताएंगे, और ये बहुत ज्यादा है।
मीडिया और राजनीतिज्ञों के बीच भी उनकी निजी जिंदगी को लेकर एक तरह का सामाजिक समझौता हुआ दिखता है कि एक हद के बाद उनके ऊपर सार्वजनिक चर्चा या बहस से बचा जाएगा। किसी राजनेता के भ्रष्टाचार, धोखाधड़ी और भाई भतीजावाद के मुद्दों पर भले ही आम लोग या मीडिया बहुत ही नृशंस हो, लेकिन निजी जीवन के तथाकथित स्कैंडल्स को ये नजरअंदाज ही करते हैं। महात्मा गांधी के ब्रह्मचर्य के बारे में प्रयोग इसका सबसे बड़ा उदाहरण है। टाइम्स ऑफ इंडिया के पूर्व संपादक इंदर मल्होत्रा ने एक बार बीबीसी को बताया था,
गांधी जी जो कोई चीज छुपाते नहीं थे, अब वो अपना ब्रह्मचर्य का तजर्बा कर रहे थे कि लड़कियां उनके दोनों तरफ सोएं, तो एक उनके फॉलोअर ने पूरी किताब लिखी कि ये बिल्कुल गलत चीज है, ये इनको नहीं करनी चाहिए। ये चलता रहा है हिंदुस्तान में।
जवाहरलाल नेहरू के एडविना माउंटबेटन से संबंधों पर भी खासी चर्चा हुई है। हाल ही में दिवंगत हुए कुलदीप नैयर ने नेहरू एडविना संबंधों के बारे में एक दिलचस्प बात बीबीसी को बताई थी।
पंडित जी हर रोज चिट्ठी लिखते थे मिस माउंटबेटन को और उसका जवाब आता था। एयर इंडिया के थ्रू आती थी, तो इसलिए मैं जब हाई कमिश्नर था तो एयर इंडिया से चेक किया तो कहते हाँ। एक दफा जब कुछ देर हो गई तो पंडित जी बहुत नाराज हो गए थे कि भाई क्यों इतना आपने देर कर दी है, तो चिट्ठी वहां से पहले चली है। मैंने कोशिश की कि ये चिट्ठियों का किसी तरह मुझे पता चले और मैं किताब छापूं। फिर आके मैंने पूछा तो कहने लगे जी उसके कस्टोडियन तो मिसेस गांधी हैं।
इंदिरा गांधी के वैवाहिक जीवन पर भी सार्वजनिक रूप से बहुत कम कहा गया है, सिवाय इसके कि उनके अपने पति फिरोज गांधी के साथ वैवाहिक संबंध बहुत अच्छे नहीं थे।
फिरोज मेरे बहुत अजीज दोस्त थे और वो कभी जिक्र भी कर देते थे, कुछ उनके यहाँ जो लेडीज आती थी वो हमको भी जानती थी, हमसे भी बात करती थी, लेकिन सबसे ज्यादा हमी नाम की एक बहुत खूबसूरत औरत उस जमाने में, अब वो लखनऊ में थी, उनके वालिद जो थे वो मिनिस्टर थे यूपी में, और इंदिरा पंडित जवाहरलाल नेहरू को देखने के लिए वे प्राइम मिनिस्टर हाउस में यहाँ दिल्ली में आ गई बच्चों को लेके, तो वहां से फिरोज का रोमांस शुरू हुआ एमरजेंसी से जरा कुछ पहले। किसी वजह से वो हमी आई प्राइम मिनिस्टर के हाउस, जब इंदिरा प्राइम मिनिस्टर थी और दफ्तर में कुछ अर्जी दे के बाहर जा रही थी, और देवकांत बरुआ उस वक्त इंदिरा जी से मिल रहा था। देवकांत बरुआ ने मुझको ये बताया कि भाई आज ये हो गया, लेकिन इसको अखबार में मत देना।
राजीव गांधी और सोनिया गांधी के प्रेम प्रसंग पर भी राष्ट्रीय मीडिया में बहुत कम चर्चा हुई है। सोनिया गांधी की जीवनी लिखने वाले راشد کدوائی بتاتے ہیں.
راجیو گاندھی کو ڈانس کرنے کا کافی شوق تھا اور یہ ایک ریسٹوراں میں ملے, تو جس ریسٹوراں میں اس کا نام ورسٹی تھا کیمبرج کے شہر میں, تو وہ جو سیڑھیاں چڑھ کے راجیو گاندھی دیکھ رہے تھے, تو سونیا گاندھی نے کا اپنا خود کا ایک یہ کہنا ہے کہ انہوں نے جس نظر سے مجھے دیکھا اس نظر میں ہی, جسے کہتے ہیں پہلے ہی نظر میں, دونوں میں عشق محبت ہو گئی. اور پھر راجیو گاندھی نے ان کو ایک باٹل میں اور فلاورس کے ساتھ میں ایک پوئم لکھ کے بھیجی اور سونیا گاندھی کو بڑا اچھا لگا اور اس کے بعد ان دونوں کا ملنا جلنا ہو گیا.
پورو پردھان منتری اٹل بہاری واجپئی کے پریوار پر دبے زبان کچھ چرچا بھلے ہی ہوتی رہی ہو, لیکن اس سے ان کی لوکپریتا پر کوئی فرق نہیں پڑا. واجپئی نے کالج کے دنوں کی اپنی دوست راج کماری کال کے ساتھ وواہ نہیں کیا, لیکن وہ ان کی شادی کے بعد ان کے پتی کے گھر رہنے لگی. سیوی پترکا کو دیے گئے ساکشاتکار میں شریمتی کال نے کہا تھا, میں نے اور اٹل بہاری واجپئی نے کبھی اس بات کی ضرورت نہیں محسوس کی کہ اس رشتے کے بارے میں کوئی صفائی دی جائے. کچھ ورش پہلے جب شریمتی کال کا ندھن ہوا تو راشٹریہ میڈیا میں ان کے بارے میں اس لیے چرچا نہیں ہوئی کیونکہ ان کے بارے میں لوگوں کو کچھ پتا ہی نہیں تھا. میں نے بات کی راجکماری کال کی دوست رہیں طلعت سمیر سے.
بہت ہی اچھی خوبصورت کشمیری لیڈی تھی, بہت گردبار, بہت وزادار, بہت اچھا لہجہ تھا ان کا, بات چیت میں بے حد میٹھا بولتی تھی اور اتنی صاف اردو زبان ان کی تھی, سب لوگ ان کو بے حد رسپیکٹ دیتے اور وہاں پر سب ماتا جی ہی کہتے تھے ان کو. ہمارے سامنے تو مطلب یہ پھر حقوق آیا, ان سے پوچھا, انہوں نے کہا کہ بھائی, تو وہ کہتی تھی اب میں کھانا دیکھتی ہوں اٹل جی کا پورا, کہ وہ جب ان کا کھانے کا وقت ہوتا ہے تو پہلے کوک آ کے انہیں دکھا بتاتا ہے کہ یہ ہے, تو وہ شی اپروو تب وہ ان کو کھانا سرو ہوتا ہے, تو وہ کافی انوالو تھیں.
ملائم سنگھ یادو کی دوسری شادی کے بارے میں بھی لوگوں کو تب پتا چلا جب آئے سے ادھک معاملے میں ملائم سنگھ نے سپریم کورٹ میں ایک حلف نامہ دیا. اجے سنگھ کہتے ہیں,
لکھنؤ میں ہم لوگ سب لوگ جانتے تھے کہ کچھ ایسا ہے, ان کی ایک وائف تو نہیں ہے لیکن وائف جیسی ہی ہیں جو کہ ان کے ساتھ ہیں جن کے یہاں وہ جاتے تھے, ہم سب لوگ جانتے تھے, لیکن اس کو لکھنا بھی نہیں ہوتا تھا, کوئی بات نہیں ہوتی تھی.
زمانے میں ایک درجن ایسے نام گنوائے جا سکتے ہیں جن کی کافی رنگین زندگی رہی ہے, وہ چاہے چندر شیکھر ہوں, ودیا چرن شکل ہوں, وسنت ساٹھے ہوں یا پھر نارائن دت تیواری ہوں. راشد کدوائی کہتے ہیں,
نریندر تیواری جب بعد میں راج بھون میں پکڑے گئے اور تو بہت ساری باتیں ان کی سامنے آ گئیں. دراصل وہاں پر بھی ایک یہی بات تھا کہ نہیں نہیں وہ تو نجی جیون ہے. آج بھی ایسے بہت سے لوگ ہیں, جیسے لوہیا جی کے بارے میں بات کرتے ہیں, اندرجیت گپتا وغیرہ نے دوسرے قسم کا عشق, مطلب صوفیانہ عشق تھا کہ وہ جن سے محبت کرتے تھے جب 62 سال کی ہوئیں عمر کے دوسرے دور میں تب انہوں نے شادی کری. آر کے دھون نے بھی شادی کری ہے قریب جب 74 سال کی عمر میں انہیں اس کا پبلک ڈکلیریشن کرا کے انہوں نے شادی. اور تو یہ تمام جو ہمارے سماج میں اصل میں ہوتا ہے کہ شادی بیاہ یا عشق پریم پرسنگ وہ بہت کامن چیزیں ہو گئی ہیں یا ایکسٹرا میریٹل ریلیشن شپ وغیرہ, تو راجنیتی اس کو بھی ایک طریقے کا ریفلیکٹ کرتا ہے. تو یہ ایک سیاست کا ایک رنگین پہلو ہے جسے ہم انڈر پلے کرتے ہیں.
اپنی محبت کے افسانے کب تک راز بناؤ گے, رسوائی سے ڈرنے والوں, رسوائی سے ڈرنے والوں, بات تمہیں پھیلاؤ گے.
ریحان فضل, بی بی سی دلی.
چلتے چلتے مکھیہ سماچار ایک بار پھر سنتے ہیں.
بی بی سی سماچار. سمندری طوفان فلورنس کی وجہ سے امریکہ کے پوروی تٹی علاقوں میں کم سے کم 4 لوگ مارے گئے ہیں. ہوا کی رفتار لگ بھگ 110 کلومیٹر پرتی گھنٹہ ہے. مانکھٹ طوفان نے فلپینس میں دستک دے دی ہے. یہ طوفان جس راستے سے ہو کر گزرے گا اس علاقے میں قریب 40 لاکھ لوگ رہتے ہیں. 9,000 سے زیادہ لوگ استھائی کیمپوں میں چلے گئے ہیں. راشٹرپتی چناؤ کے دوران ڈونلڈ ٹرمپ کے کیمپین مینیجر رہے پال مینفورٹ امریکی چناؤ میں روس کے کتھت دخل کی جانچ میں سہیوگ کے لیے تیار ہو گئے ہیں. ऑस्ट्रेलिया में लोगों को चेतावनी दी गई है कि अगर वे स्ट्रॉबेरी खा रहे हैं तो उसे सीधे मुंह में डालने से पहले काट कर देख लें। ऑस्ट्रेलिया में बीते कुछ दिनों में बहुत से लोगों को स्ट्रॉबेरी में सुई मिली। बीबीसी समाचार।
मुख्य समाचार सुना रही थी भूमिका राय और स्टूडियो का तकनीकी पक्ष संभाल रहे थे तिलक राज भाटिया। अब संदीप सोनी के साथ नमस्कार भारत की पूरी टीम को दीजिए इजाजत। अगला प्रसारण दिन भर शाम 7:30 बजे। तब तक BBCHindi.com आपके साथ है।